ऐसे ही दोनों सहेलियों की रात गुजर गई थी। अगली सुबह रेणुका का परिवार जाह्नवी का हालचाल लेने आ चुका था, मगर जाह्नवी के परिवार से कोई नहीं आया था। उसके दादाजी सुबह 9 बजे आए थे, वे काफी देर से अस्पताल पहुंचे थे। सारी रात जाह्नवी सोई नहीं थी। दोनों सहेलियां बातें करती हुई रात को देर से सोई थीं और सुबह जाह्नवी की आंख नहीं खुली थी। जैसे ही नर्स कमरे में आई, उसने रेणुका से बात की तो जाह्नवी की आंख खुल गई। कैसी हैं आप? नर्स ने पूछा। मैडम आते ही होंगे आपको देखने के लिए, आपको छुट्टी भी करनी है। ठीक है, जाह्नवी भी उठकर बैठ गई थी। इतना समय हो गया तुमने मुझे नहीं उठाया? जाह्नवी ने पूछा। मुझे लगा तुम मुश्किल से सोई हो इसलिए नहीं उठाया। बात करते हुए जाह्नवी गेट की तरफ देख रही थी। अभी तक कोई नहीं आया मुझसे मिलने? नहीं, दादाजी आते होंगे, रेणुका कहने लगी। वैसे मैंने घर पर फोन कर दिया है, जरूरत पड़ी तो तुम मेरे साथ चलना। तुम्हारे साथ? ऐसे कैसे? कहकर जाह्नवी चुप हो गई। क्यों, मेरे साथ जाने में क्या परेशानी है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है परेशानी नहीं है, मगर जय नहीं जाने देगा। पागल हो चुकी हो, तुम्हें उसका इंतजार है तो तुम्हें क्या लगता है अब तक उसे होश नहीं आया होगा? अगर उसे आना होता तो जैसे ही उसका नशा उतरता वो तुम्हारे पास आ जाता और तुम उसे माफ करने को तैयार हो। उसकी बात पर जाह्नवी की आंखें भर आई थीं। रेणुका उठकर उसके पास आ गई। क्यों बेवकूफ बन रही हो? जाह्नवी उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे पक्का यकीन था जैसे ही जयराज को होश आएगा वो मुझे मनाने के लिए आएगा, मुझे उसका रात भर इंतजार था। तुम ठीक कह रही हो, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। तुम एक बार प्रदीप मेहता से फोन करके पूछो तो सही, वो ठीक तो है ना? बिल्कुल पागल हो तुम, उसे कुछ नहीं होगा, परेशानी में तो तुम आई थी। और प्रदीप मेहता से जयराज को पता चल गया होगा कि तुम्हें इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, मगर देखो खुदा आना तो दूर फोन भी नहीं आया। और तो और उसने अपने असिस्टेंट प्रदीप मेहता को भी नहीं भेजा। थोड़ा सा मजबूत बनो जाह्नवी, दुनिया पैरों पर रखती है। चलो फिर तुम्हारे घर चलते हैं। जाह्नवी अपनी जगह से खड़ी होने लगी। अब अगर उसे आना होता तो वो आ गया होता। समय देखो क्या हो गया है, दादाजी आ जाएंगे, जरूर घर में झगड़ा पड़ा होगा कि वो नहीं चाहेंगे मैं वहां रहूं, तभी दादाजी आते हैं। बेटा मैं लेट हो गया, दादाजी ने कहा। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है, मैंने बिल दे दिया है बेटा, बस डॉक्टर तुम्हारा एक बार चेकअप कर ले फिर हम लोग चले। ठीक है, आप अकेले ही आए हैं दादाजी? जाह्नवी ने अकेले देखकर पूछा। वे लोग टैक्सी से घर की तरफ जाते हैं। रेणुका भी उनके साथ ही आ गई थी। उसने कहा कि वो जाह्नवी को घर छोड़कर चली जाएगी। टैक्सी जिस रास्ते से जा रही थी वो रास्ता घर का नहीं था। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये तो घर का रास्ता नहीं है, जाह्नवी ने टैक्सी में बाहर देखते हुए पूछा। हाँ बेटा हम लोग घर नहीं जा रहे, दादाजी ने कहा। तो क्या आप मुझे सिंघानिया हाउस लेकर जा रहे हैं, जाह्नवी ने उदास होते हुए कहा। तभी एक आलीशान बिल्डिंग के आगे टैक्सी रुकती है। यहाँ तो प्रीति का घर है, प्रदीप मेहता इसी बिल्डिंग में रहता है, रेणुका ने कहा। हम लोग भी यहीं पर रहेंगे बेटा। वे लोग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। जाह्नवी और रेणुका को समझ नहीं आया था। क्या हुआ दादाजी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मेरे दोस्त का घर है, वे लोग विदेश में रहते हैं, खाली पड़ा है, हम लोग यहीं रहेंगे। तुम्हें तुम्हारी चाची जी का तो पता ही है, मैं तुम्हें वहां नहीं लेकर जा सकता। लिफ्ट से उतरकर वे टॉप फ्लोर पर जाते हैं। दादाजी चाबी से घर खोलते हैं। वे लोग एक आलीशान फ्लैट के अंदर जाते हैं। आज से हम दोनों यहीं रहेंगे, सुबह भी इसी वजह से लेट हो गया, पहले मैंने सब इंतजाम किया, वे लोग बातें करते हुए अंदर आए। मैं पानी लेकर आती हूँ, रेणुका खड़ी होने लगी। तभी किचन से मेड उनके लिए पानी लेकर आ गई। मैंने सब इंतजाम कर दिया है, मुझे पता है कि जाह्नवी की तबीयत ठीक नहीं इसलिए इसे परमानेंट रख लिया है, ये यहीं रहेगी। चलो ये तो अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी, रेणुका ने जाह्नवी से कहा। देखो बेटा अब जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, मगर जिंदगी में मजबूत होकर ही जिंदगी निकलती है। अपना कल से कॉलेज जाना शुरू करो, और तुम जाते हो तो जाह्नवी को साथ ले जाना, दादाजी ने कहा। अब तुम जाकर अपना कमरा देख लो। ठीक है दादाजी, जाह्नवी और रेणुका कमरे में चली गईं। ये दादाजी ने बहुत अच्छा किया, अगर उस घर में रहती तो तुम्हारी चाची तुम्हें पागल कर देती, मगर दादाजी के पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे, मुझे एक बार पूछना चाहिए, वो बाहर आती है। दादाजी सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। दादाजी इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए होंगे। तुम क्यों फिक्र करती हो, तुम्हारा दादा अभी जिंदा है, मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है जिससे मैं हम दोनों को बहुत अच्छे से रख सकता हूँ, फिक्र मत करो तुम, जाओ जाकर आराम करो। दोनों वापस आ गई थीं। मैं प्रीति से मिलकर आती हूँ, उससे मिलकर मैं चली जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, अभी आराम करो, मैं उससे मिलती हूँ, तुम कर लेना। रेणुका उसे फ्लैट से निकलती है और दूसरे फ्लैट में जो कि प्रदीप मेहता का था उसके दरवाजे पर घंटी बजाती है। थोड़ी ही देर में प्रीति गेट खोलती है, वो रेणुका को देखकर हैरान हो जाती है, वो भागकर उसके गले लग जाती है। कैसी हो तुम, तुमने तो सरप्राइज दे दिया, मुझे अंदर तो आने दो, यहीं रहोगी क्या, वैसे अच्छी लग रही हो, रेणुका उससे कहती है। हाँ ठीक हूँ मैं, प्रीति ने कहा। वैसे तुम्हारा ये प्रदीप मेहता कैसा आदमी है? अच्छे हैं, ध्यान रखते हैं और मुझे स्पेस देते हैं, प्रीति बताने लगी। बहुत रिस्पेक्ट से उसका नाम लिया जा रहा है, रेणुका कहते हुए हंसने लगी। जो भी हो, मेरी शादी हुई है उनसे, प्रीति कहने लगी। वैसे जानवी कैसी है? प्रीति उसे पूछने लगी। तुम्हारा पति कहाँ है पहले ये बता। वो तो रात घर ही नहीं आए, उनका फोन आया था कोई काम है। अच्छा, रेणुका ने उसकी बात पर कहा। क्या बात है? जिस तरह से रेणुका उससे सवाल कर रही थी, प्रीति ने वापस पूछा। अपने पति से पूछ लेना क्या किया जयराज ने जानवी के साथ। क्यों, क्या किया? रेणुका उसे सारी बात बताती है। ये कल शाम की बात है ना, प्रदीप परेशान थे, कह रहे थे जयसर फोन नहीं उठा रहे। थोड़ी देर बाद वो चले गए, उसके बाद वो अभी तक नहीं आए। वो भी उसी का असिस्टेंट है, संभल कर रहना। मैं जानवी से मिलकर आती हूँ, अभी उसे आराम करने दो, फिर चली जाना, मैं घर जा रही हूँ। रेणुका वहां से चली जाती है और प्रीति बैठकर सोचने लगती है।